ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे। परमानन्दमाधवम् भज गोविन्द गोविन्द गोपाल भज मुरले मनोहर नन्दलाला भज गोविन्द गोविन्द गोपाल श्रीमद्भागवतम् नवमस्कन्द तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 28। सो अन्तः समुद्रे नगरिं सो अन्तः समुद्रे नगरिं विनिर्माय कुशस्थलिं विनिर्माय कुशस्थलिम् अस्तितो भुङ्क्त विषयान् अनन्तार्दिनरिन्दम् तस्य पुत्र सतंग यज्ञे ककोद्यमी ज्येष्ठमुत्तमम् ककोद्यमी ज्येष्ठमुत्तमम् सो अन्तः समुद्रे नगरिं विनिर्माय कुशस्थलिम् आस्थितो भुङ्क्त विषयान् अनर्तादिन् नरेन्दम् तस्य पुत्र सतं यज्ञे ककोद्मे ज्येष्ठमुत्तमम् माताएं, सह रेवत अंतः समुद्रे, समुद्र के नीचे, नगरिम शहर, विनिर्माण बनाकर, कुशस्थलिम कुशस्थली नामक, आस्थिताः वहां रहा, अभंगतः भौतिक सुख का भोग किया, विषयान राज्य, अनर्त आदिन अनर्त तथा अन्य, अरिम दम हे शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज परीक्षित, तस्य उसके पुत्र शतम 100 पुत्र, यज्ञे उत्पन्न हुए, ककुद्मी ज्येष्ठम जिनमें से ककुद्मी ज्येष्ठ था, उत्तमम अत्यंत शक्तिशाली तथा ये ऐश्वर्यवान। ट्रांसलेशन। हे शत्रुओं के दमन करता महाराज परीक्षित, इस रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नामक राज्य का निर्माण कराया। वहां रहकर उसने अनर्त इत्यादि भूखंडों पर शासन किया। इसके 100 सुंदर पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा ककुद्मी था। ककुद्मी रेवतिं कन्याम स्वामदाय विभुंगत पुत्रावरं परे प्रश्नं ब्रह्मलोकमपावृतम्। ककुद्मी अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास गया, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, और उसके लिए पति के विषय में पूछताछ की। तात्पर्य, ऐसा लगता है कि ब्रह्मा का धाम ब्रह्मलोक भी भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। आवर्तमाने गांधर्वे स्थितो लब्ध क्षण क्षण तदंत आद्यमानस्य स्वाभिप्रायं न्यवेदयेत्। जब ककुद्मी वहां पहुंचा तो ब्रह्मा जी गंधर्व का संगीत सुनने में व्यस्त थे, और उन्हें बात करने की तनिक भी फुर्सत न थी। अतएव ककुद्मी प्रतीक्षा करता रहा, और संगीत समाप्त होने पर अपने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपनी चिरकालीन इच्छा व्यक्त की। गतकाल हमारे देवकी नंदन प्रभु जी ने विगत श्लोकों को बहुत सुंदर और सरल रूप में आप लोगों के समक्ष विस्तार से वर्णन किया। तो गतकाल की जो श्लोक सब थे, वो सभी सर्याती के पुत्री सुकन्या और तथा उनके पति च्यवन मुनि के विषय में था, पर आज हम रेवती और बलराम के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। इस श्लोक में रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नामक राज्य का निर्माण करवाया, अर्थात उन्होंने द्वीप बनाया। ह्रद उसे कहा जाता है जो चतुर्पार्श्व में स्थल हो और बीच में जल हो, उसका नाम है ह्रद। और चतुर्पार्श्व में जल हो और मध्य में स्थल भाग हो, उसे कहते हैं द्वीप। द्वैपायन मुनि व्यासदेव जी का नाम इसलिए रहा क्योंकि उनका जन्म द्वीप में हुआ था, अर्थात चतुर्पार्श्व में जल था और मध्य स्थल जो है वो स्थल भाग था, इसलिए वो द्वैपायन मुनि कहलाए। श्रीमद् भागवतम में बहुत कथा विभिन्न प्रकार की आता है, जिस प्रकार दूध से दही बनता है और दधि को मंथन कर दिया जाए उससे बनता है मक्खन, और मक्खन को जब हम आग के ऊपर थोड़ी सी गर्म से पकाते हैं तो उससे बनता है घी। पर दूध की स्वाद दही के स्वाद से अलग है और दधि के स्वाद मक्खन के स्वाद से अलग है, और मक्खन की स्वाद घृत की स्वाद से अलग है, अर्थात घृत ही सर्वश्रेष्ठ स्वाद है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम सभी पुराणों और शास्त्रों का सारांश है। अष्टादश पुराणेषु व्यासेन वचन द्वयः परोपकाराय स्वर्गाय नरकाय परिपीडनाय। दूसरी श्लोक में व्याख्या है उसकी जो अंतिम चरण है, पर उपकाराय स्वर्गाय परनिंदा नरकं गति ही। व्यासदेव इस संसार के सभी पुराणों और शास्त्रों का रचयिता है, इसलिए व्यासोचिष्ठ जगत सर्वम, ये जगत के जितनी पुराण साहित्य उपनिषद इत्यादि इत्यादि है, बा जो भी व्यक्ति और कुछ बनाते हैं ये सब व्यासदेव जी से आइडिया लेकर के लिखी गई पुस्तकें हैं, इसलिए व्यासदेव की उचिष्ट ये सारा संसार है। और जहां पर श्रीमद् भागवत की बात है, भाकारात भवेत्य भाव, श्रीमद् भागवतम भाव या भक्ति की संपूर्ण ग्रंथ है। भकारात भवेत्य भाव, गकारात ज्ञान उद्भव, और ये ज्ञान के समुद्र हैं। द्वैपायन मुनि व्यास देव ने ज्ञान के समावेश को इसमें भर रखा है, अर्थात श्रीमद् भागवत की ठीक ठीक रूप से कोई अध्ययन कर ले वो प्रकांड ज्ञानी बन सकता है। बकारात ब्रह्म रूपंच, श्रीमद् भागवत साक्षात ही गोविंद हैं, और ये जो ब्रह्म रूप है विग्रह है ये वांग्मय मूर्ति है। द्वैपायन मुनि व्यास देव जी ने शब्दकार में शब्द की छंद में श्रीमद् भागवत को साक्षात विग्रह बनाया, अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का यदि हम आरती करें और श्रीमद् भागवत को आस्थान पर रख करे यदि हम आरती करें, दोनों की फल बराबर है। ये वांग्मय मूर्ति है। और बल्कि श्रीमद् भागवत नहीं होता तो हम परम पुरुष श्री कृष्णचंद्र जी को समझ नहीं पाते। हमारे परम पिता का रूप कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, उनकी स्वभाव कैसा है, श्रीमद् भागवत बताता है। इसलिए ये सर्व ग्रंथों से परे हैं, अर्थात पुराण तिलकम, ये सभी पुराणों का शीर्ष स्थली है, अर्थात तिलक है। और तकारात तत्व दर्शन, त शब्द में समस्त तत्वों को समावेश में श्रीमद् भागवत में रखा है। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्ति भाव ज्ञान और ब्रह्म और तत्व के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ हैं। ये जो चरित्र हम रेवती के पढ़ने जाते हैं और आगे दो तीन श्लोक हम पढ़ेंगे, आज इसको शेष करेंगे। रेवती को लेकर के ब्रह्मा जी के पास उनके पिता जाते हैं, इसलिए वो विवाह के बारे में कुछ बातें करेंगे। और उस समय ब्रह्मा जी गंधर्व इत्यादि की वाद्य और नृत्य में श्रवण में रत थे। गंधर्व लोग वाद्य में बहुत पारंगत होते हैं। और ब्रह्मा जी जब श्रवण कर रहे थे, कन्या के पिता अर्थात रेवती के पिता कुकुद्म वो अपेक्षा करते रहे। इसको कहते हैं संस्कार। अगर कोई गुरुजन व्यक्ति कहीं वार्तालाप में रत हैं और कुछ श्रवण कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है जो हम उनको तुरंत डिस्टर्ब ना कर दें, क्योंकि वो किस कार्य में, श्रवण में हो या वाक्य में हो, आदान प्रदान में हो, वो कुछ कार्यरत हैं, तो उनको तुरंत हम डिस्टर्ब ना करें, बल्कि हम ऐसी ही स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि उनकी दर्शन हमारे ऊपर पड़े आंखें, ताकि उनको लगे जे कोई व्यक्ति मेरे से कुछ बात करना चाहता। संस्कार विहीन व्यक्ति तुरंत दरवाजा, और दरवाजा को खुलते समय भी कराग्र में न करना चाहिए, ये संस्कार सिखाता है। अगर कोई गुरुजन की द्वार पर हम खड़े हैं, अंदर जाना चाहते हैं, तो कराग्र में उच्च ध्वनि से भी नहीं, क्योंकि उससे भी कर्ण कटु होगा, क्षुद्र ध्वनि से, ताकि उन्हें पता चले कोई व्यक्ति द्वारा देश में है, कोई भी खुले। ये अच्छा संस्कार है। और कुकुद में अपनी कन्या को लेकर तो ब्रह्मा जी के पास गए हैं रेवती को, परंतु ब्रह्मा जी अभी श्रवणरत हैं, गंधर्व के गीत और वाद्य में वो श्रवण कर रहे हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि वो अपेक्षा करते रहे जब तक ब्रह्मा जी वो कार्य को समाप्त ना करें। ब्रह्मात्मभु सुरजेष्ठ परमेष्ठिन पितामह हिरण्यगर्भलोकेश स्वयंभु चतुरानन भाताब्जो निद्रोहीण विरंची कमलासन स्रष्टा प्रजापतिर वेधा विधाता विश्वसृक विधि। अमर कुश पुराणांतर्गत ये ब्रह्मा जी के नाम है। और ब्रह्मा जी इस श्लोक में उनके लोक को बताया, वो तीनों गुणों से भी परे हैं, परंतु ब्रह्मा जी वैवाहिक जीवन में बहुत कुछ जानते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में। यही कारण था जे रेवती के पिता वो ब्रह्मा जी के पास कन्या को लेकर के पहुंचे। क्या बात करेंगे ना, कन्या के पति कैसे होना चाहिए, ये उद्देश्य था। कन्या किसे कहा जाता है? कन्या शब्द का अर्थ है पितृगृह में उसे रजस्वला नहीं होना चाहिए, ऋतुमती नहीं होना चाहिए। यदि हो जाए तो वो दान के लायक नहीं रहती। दान कन्या का होता है, कुमारित्व की होता है, अर्थात पितृगृह में यदि कन्या रजस्वला बन जाए तो पिताजी को कुछ भाग पाप लगता है, और कन्या उससे भी उम्र में आ जाए, यदि पिताजी उसके लिए एक योग्य पति जुगाड़ नहीं कर पाते तो कन्या को स्वयं विवाह करने की भी स्वीकृति शास्त्र देती है। जबकि मनुश्रुति इत्यादि में ये बताया जे कन्या स्वतंत्र नहीं है, पर आज अगर उसकी चर्चा हम शास्त्रों का करें तो ये जो समय है, जिस समय पर हम अभी चल रहे हैं, बहु लोगों की बहुत बातें सामने आता है, ऐसा क्यों नहीं, वो अलग बात है। परंतु सत्य है वैदिक साहित्यों में वर्णन जिस संस्कार का है उसमें कन्या ऋतुकाल में पिताजी की गृह में नहीं आना चाहिए, उससे पहले कन्या की विवाह हो जाना चाहिए, यह शास्त्र विधि है। तो आज रेवती को लेकर के पिता कुकुद में ब्रह्मा जी के पास गए हुए हैं। क्या पूछेंगे? जब मेरे कन्या के साथ वो बताते हैं जब मेरा ये अभिलाष है, तो आगे श्लोक में आप सुनोगे ब्रह्मा जी बहुत हंस पड़ते हैं ये बात सुन करके, और ब्रह्मा जी कहते हैं तच्छ्रुत्वा भगवान ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाच अहो राजन् निरुद्धास्ते कालेन हृदये कृता। उसके वचन सुनकर शक्तिशाली ब्रह्मा जी जोर से हंसे और ककुद्मी से बोले, हे राजा, तुमने अपने हृदय में जिन लोगों को अपना दामाद बनाने का निश्चय किया है वे काल क्रम से मर चुके हैं। तत् पुत्र पौत्र तृणंग गोत्राणी च न शृणुमहे काल अभियात श्रीणव चतुर्युग विकल्पितः। सत्ताईस चतुर्युग बीत चुके हैं, तुमने जिन लोगों को रेवती का पति बनाना चाहा होगा वे अब सब चले गए हैं, और उनके पुत्र पौत्र तथा अन्य वंशज भी नहीं रहे हैं, अतः तुम्हें उनके नाम भी नहीं सुनाई पड़ेंगे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु या 1000 महाजुग बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी ने राजा ककुद्मी की सूचित किया कि पहले से ही 27 महाजुग बीत चुके हैं, जिसमें से प्रत्येक में 4 युग सत्य त्रेता द्वापर तथा कलियुग होते हैं। उन युगों में उत्पन्न सारे राजा तथा महापुरुष पहले ही विस्मृत हो चुके हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य से होकर गतिशील काल की यही रीति है। ब्रह्मा जी कहते हैं जे इतने इतने युग बीत चुके हैं और तुम जिनके बारे में सोच रहे हो ब्रह्मा जी, तुम्हारे कन्या के लिए ऐसे एक योग्य पति होना चाहिए, वो अभी संसार में नहीं है। मैं बताऊंगा ब्रह्मा जी का दिन के साथ बा देवताओं के दिवस के साथ मर्त्य का जो दिवस है किस प्रकार होता है। उससे पहले कन्या को लेकर के रेवती को लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था जे ब्रह्मा जी विधिवत रूप में जानते हैं जे कन्या की विवाह किस लड़के से होना चाहिए। ब्रह्मा जी इसलिए प्रजापत्य प्रजापति विवाह या प्रजापति घटसूत्र कहा जाता है। विवाह के भी 8 प्रकार के विवाह शास्त्रों ने बताया, उनमें से प्रजापत्य जो विवाह है वो सबसे उत्तम माना गया है। शास्त्र विधि के अनुसार मंडप में बैठ करके ब्राह्मण ये बताता है और विवाह संपन्न करता है, कन्या को दान के रूप में पुरुष ग्रहण करता है। तो मैं पहले ही कहा दान का अर्थ है पवित्रता, दान का अर्थ है कन्या। कन्या काल से नहीं हो तो दान की विधि नहीं है। अर्थात शास्त्रों ने कन्या को 4 कैटेगरी में बांटा, पद्मिनी, शंखिनी, चित्रिणी और हस्तिनी। ये 4 कैटेगरी कन्याओं की है। और पुरुष वर्ग में लड़के की 4 कैटेगरी भी होता है, अश्व, मृग, वृष और शशक। शशक जाति के पुरुष भगवान रामचंद्र थे और पद्मिनी जाति की कन्या माता सीता थी। और कलियुग में ये कभी भी संभव नहीं है जे शशक जाति पुरुष के साथ पद्मिनी जाति कन्या का संबंध हो। इसको कहते मेलक। जो रेवती को लेकर के अभी ककुद में बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी आगे बताएंगे जे इसके लिए योग्य वर कौन है और 2-3 श्लोक हम पाठ करेंगे। तो उससे पहले जब हम कोई मेलक करते हैं तो हम ये देखते हैं जे कन्या किसी राशि से बिलोंग करता है। ये जो बात मैं बताता हूं ये है हमारे ज्योतिष शास्त्र का कुछ बातें, और जो बात मैं बता रहा हूं कैटेगरीज ये भगवान शिव पार्वती श्रोता हैं, और जो बात मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। कन्या वरयते रूपम, कन्या को हमेशा ये चिंता रहती है जब मेरा होने वाला जो पति है वो सुंदर होना चाहिए। और माता वित्तम, माँ को ये चिंता रहती है मेरे कन्या अगर उस घर में जाए वो क्या खाएगी, वो घर में इतना संपन्न है, धन दौलत है, मेरे कन्या को कोई तकलीफ तो नहीं होगा, ये माँ की सबसे बड़ा चिंता है। पिताम कुलम इच्छन्ति, पिता को ये चिंता है जो लड़का मेरे कन्या के लिए बने बा बनेगा उसकी चरित्र तो ठीक है, उनका खानदान कैसा है, मेरे बेटी को छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। और मिष्टान्न इतरे जना, और जितने लोग रहे साथी संबंधी वो खाने पीने की चिंता करते हैं, किंतु पिता की चिंता ये ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी विचार कर सकते हैं रेवती जिस प्रकार की कन्या है उसके लिए योग्य वर कौन है। और पिता के मन में जो जो था उन्होंने तो कहा, पर ब्रह्मा जी बोलते हैं वो सभी के सब मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। अर्थात यदि हम किसी पुरुष को बेजोड़ कन्या से विवाह कर बैठे, इसमें योनि का भी गणना होता है। गणना में 12 से 15 चीजें देखा जाता है जिसको हम कहते हैं राजजोट। राजजोट को पड़ गया अर्थात 2-3 अगर गलत कहीं हुआ तो वो चलता नहीं क्योंकि राजजोट उसको कट देता है। किंतु आजकल की विवाह जिस प्रकार है कैसे होता है, एक फैक्ट्री का विवाह दूसरी फैक्ट्री में होता है, अर्थात कन्या की जो पिताजी है वो तीन फैक्ट्री का मालिक है और जो लड़का की तरफ से जो आते हैं उनका पांच फैक्ट्री है, तो चलेगा, विवाह हो सकता है, हम सेम कैटेगरी के हैं, है ना, चलेगा। किंतु विवाह जो शब्द है ना, ये फैक्ट्री से होता है ना वो धन से चलेगा, ये चलेगा स्वभाव से। अगर स्वभाव की मैचिंग नहीं है वहां पर बहुत तकलीफ है। आप लोग गतकाल प्रभु जी देवकनंदन प्रभु जो जो श्लोकों की व्याख्या किए होंगे उनमें से एक श्लोक की व्याख्या था जे च्यवन ऋषि बहुत रुग्ण थे और वो च्यवन ऋषि बड़े वृद्धा थे, उनके चमड़ी एकदम लुचापन था, नीचे आ चुका था और जो सुकन्या थी वो बहुत ही यंग थी। बिना अभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम, विषम गोष्ठी दरिद्राणाम वृद्धस्य तरुणी विषम। बूढ़े पति को यदि तरुणी कन्या विवाह कर दिया जाए वो जहर का काम करता है, परंतु बड़े विद्वान और बड़े पराक्रमी उनके पास बहुत गुण था। किसके पास? च्यवन ऋषि के पास। यदि वा वो वृद्धावस्था में थे और रुग्ण थे किंतु उनके पास गुण तो बहुत था, और कन्या की शादी हुई, कन्या बहुत कम उम्र की थी और ऋषिराज यही सोच रहे थे जे कन्या तो यंग है और मैं तो वृद्धावस्था में हूं, तो ये वृद्धावस्था को मैं चेंज कैसे करूं। तभी स्टोरी आगे बढ़ता है, अश्विनी कुमार दोनों आते हैं, वो वैद्य हैं और इंद्रदेव उनको कभी यज्ञ सुमरस यज्ञ में भाग लेने नहीं देते थे क्योंकि वो अशुद्ध कार्य करते, डॉक्टर हैं, वैद्यराज हैं, दवाई देते थे। तो जब वो अश्विनी कुमार को देखे, दोनों अश्विनी कुमार को हमारे ऋषिराज तो वृद्धावस्था में थे, उन्होंने सोचा जे हे अश्विनी कुमार तुम मेरे वृद्धावस्था को ले लो, मुझे यंग बना दो और मैं तुमको समरसपान करने में भाग दे दूंगा। तो दोनों में वापस में संधि हो गई, तो उन्होंने एक कुंड बनाया, झील बनाया, जिस झील में उन्होंने ऋषिराज को डुबा दिया और डुबा के जब उठा वो कंदर्प बन चुके थे। क्या टेक्नोलॉजी था हमारे शास्त्र में, हमारे उन दिनों के जो वैद्यराज थे वो कितने मेडिसिन में कितने आगे थे, मेडिकल साइंस में। एक कुंड बनाया और कुंड के अंदर उनको डुबो दिया और जब वो उठे वृद्धापा चला गया था और वो तरुण अवस्था में एकदम सुंदर होके निकले, और उसी की थ्योरी से वैद्यराज कंपनी ने आज च्यवन प्राश बनाया। और बाबाओं ने च्यवन प्राश बनाते हैं, मेरा च्यवन प्राश अच्छा है, अर्थात खाओ और तंदुरुस्ती बनाओ और च्यवन ऋषि जैसे बन जाओ। कलिजुग की व्यक्ति ऐसे सोचते हैं, पर च्यवन प्राश उससे निकला। जो भी हो, पर ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे और ब्रह्मा जी रेवती के पिता को क्या बोल रहे हैं, जो कितने युग बीत चुके हैं, जो जो पति को तुम चुन रहे हो वो पति सब मर चुके हैं, कोई व्यक्ति जीवित नहीं है, तो किससे शादी करेंगे। तो आइए थोड़ा देखते हैं हमारी मृत्यु के साथ और ब्रह्मा जी की जो समय है वो किस प्रकार चलता है। एक सेकेंड इक्वल टू 60 बिलित्या और 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट और 3 घंटा इक्वल टू 1 प्रहर और 4 प्रहर इक्वल टू 1 दिन और 4 प्रहर दिन का, 4 प्रहर रात का, रात दिन मिलकर 8 प्रहर होता है, 8 प्रहर सब। प्रहर का अर्थ है 3-3 घंटा एक प्रहर का। 15 दिवस में एक पक्ष होता है, महीना में 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 15-15 दिन का, और दो पक्ष में एक महीना होता है, और 12 महीना में दो अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, 6-6 महीना का, और ये 12 महीना में 6 ऋतु ये धरती मां भक्ति है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत और बसंत। कलियुग इसी प्रकार एक वर्ष 365 दिन के होते हैं, और इससे दो अयन होते हैं, षड ऋतु बीतता है एक साल में। तो ऐसे ही कलियुग 432,000 का होता है, कलि का परमायु 432,000, द्वापर का परमायु 8,64,000 द्वापर का है, 8,64,000 ईयर्स ऑफ द्वापर, और 12,96,000 इज त्रेता, और 17,88,000 इज एज ऑफ सत्य योग। तो चार योग का एक योग बना दिया जाए, एक चौकड़ी बनता है, और एक चौकड़ी में सत्य, त्रेता, द्वापर और कली युग की समाप्ति होती है, एक चौकड़ी। 71 चौकड़ी, समझ में आया, 71 चौकड़ी अर्थात 71 टाइम्स सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली सब बीते, एक मनमंत्र बनता है, और 14 मनमंत्र एक कल्प बनता है, और एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन है। जब हमारे जगन्नाथपुरी के राजा इंद्रदुम्न ने मंदिर बना करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी को स्वागत करने गए थे, ये मंदिर की प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी करेंगे, तब ब्रह्मा जी गायत्री जप में व्यस्त थे और वो बैठे रहे। जब ब्रह्मा जी की गायत्री खत्म हुआ तब वो ब्रह्मा जी को बोल पाए, और ब्रह्मा जी को लेकर के आए, आज अगर आप जाओ, ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है जहां पर ब्रह्मा जी उतरे थे, आज भी है उड़ीसा में। तो ब्रह्मा जी जब आके पहुंचे तो जगन्नाथ जी की जो मंदिर बनाया हुआ था इंद्रदुम्न के द्वारा, वो मंदिर बिल्कुल रेत के नीचे चला गया था, अर्थात समुद्र के किनारे में था, अर्थात कितने कितने वर्ष बीत गए, हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, एक कल्प युग एक दिन ब्रह्मा का था। तो फिर गाल माधव की कथा आता है, फिर वो मंदिर को आविष्कार करते हैं क्योंकि वो रेती के नीचे चला गया था। पर ब्रह्मा जी का एक दिन, मर्त्य का एक कल्प युग, एक कल्प युग में एक दिन ब्रह्मा जी का, तो कितना कितना परिवर्तन हो गया होगा। परंतु कभी कभी हम किसी के घर में जाते हैं, वो तुरंत बोल पड़ते हैं, स्वामी जी वो जमाना नहीं है, और ये बचपन में उठ के भक्ति में लगो, ये करो, जमाना बदल गया है। सोचो भक्त मेरे, जमाना कभी नहीं बदलता, बदलते कौन, कौन बदल जाता है, हाँ लोग, हाँ बहुत अच्छा कहा माता ने, लोग बदल जाते, हम बदल जाते, जमाना नहीं बदलते, क्योंकि जो समय की कैलकुलेशन है, कोई सूर्य से लेता है तो कोई चंद्रमा से लेता है। पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि कालस्य किम गच्छति जाति यौवनम तथापि लोक कथयति न बुध्यते। हमने जब से जन्म लिया वही देखा, सूर्य भगवान की उदय हुआ, फिर रात्रि समय में चंद्रमा का ही उदय हुआ, पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरे, फिर वही सवेरा हुआ, फिर वही संध्या हुआ, हाँ? तो फिर कालस्य किम गच्छति,
काल का क्या बिगड़ा, समय कैसे बदल गया। अगर बदल गया है कुछ, जाति यौवनम, हमारा यौवन टल गया, 20 साल पहले जो हम थे आज हम वो नहीं है, परिवर्तन आ गया, तो परिवर्तन हम में आया, समय का नहीं। तो समय वही है, परंतु ब्रह्मा जी यहां समझाते हैं, जे कुकुद्मी तुम जिन जिन लड़कों की बात करना चाहते हो, पति के लिए सुयोग्य वर सोचते हो, वो सब मर चुके हैं। सुतांग दत्ता नवद्याग्निं बलाय बलशालिने बदर्याक्षं गतो राजा तप्तम नारायण आश्रम। तत्पश्चात राजा ने अपने अति सुंदरी पुत्री परम शक्तिशाली बलदेव को दान में दे दी और सांसारिक जीवन के विरक्त होकर वह नर नारायण को प्रसन्न करने के लिए बदरिकाश्रम चला गया। इत्यादिष्टो भिवंद्याजं नृपः सोपुरमागतः त्यक्तं पुण्यजनत्रासाद भात्रोर्भि दीक्ष परिस्थितो। ब्रह्मा जी ने यह आदेश पाकर ककुद्मि ने उन्हें नमस्कार किया और अपने निवास स्थान को लौट गया। तब उसने देखा कि उनका आवास रिक्त है, उनके भाई तथा अन्य कुटुंबी उसे छोड़कर चले गए हैं और यक्ष जैसे उच्चतर जीवों के भय से वे समस्त दिशाओं में रह रहे हैं। बलदेव भगवान है, जो कोई उनके विषय में श्रवण और उनका कीर्तन करता है वो पवित्र हो जाता है, क्योंकि वे समस्त जीवों के सतत हितैषी हैं। अतएव वे अपने सारे साज सामान सहित सारे जगत को शुद्ध करने तथा उसका भार कम करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जे तुम्हारे रेवती कन्या के लिए एकमात्र बलदेव ही उत्तम पुत्र है, आप उनके हाथ में तुम्हारी कन्या को दान दो। देखो, दान देने के लिए भी पात्र उचित होना चाहिए, नहीं तो दान नहीं दिया जा सकता। हमारे शास्त्र में जब दान के लिए पुत्र बरवेश होकर के आता है तो उसको एक पत्थर के ऊपर खड़ा किया जाता है और कन्या के पिता उसके चरण धोत करता है। उसमें एक वेद मंत्र है, वो मंत्र का अर्थ यह है जे कुमार, अब तुम ब्रह्मचर्य जीवन में थे और अब तुम गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हो, क्या तुम ये पत्थर के भांति सहन कर सकते हो। तब जो कुमार है बा जो शादी करने के लिए लड़का आया हुआ है और उसकी चरण धोत हो रहा है पत्थर के ऊपर, वो हां भरता है, मैं भरने के लिए तैयार हूं। अगर ये वेद मंत्र के अनुसार हमारी इस कलिजुग की जितनी पतियां हैं अगर इस मंत्र को याद रखें तो उनको गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा सहन की आदत बनेगा, पर आज कोई सहन करता नहीं, तू मैं दो बात में लाइफ टूट जाती है। किंतु वेद क्या कहता है जे ना तुम नहीं तोड़ सकते, ओम मम व्रतते ते हृदयम दधातु, हे मेरे होने वाले पत्नी, तुम्हारा मन और मेरा मन एक रहे, कभी भी क्षीण ना हो। मम चित्तम मनोचित्तम ते अस्तु हु, मेरे हृदय के साथ तुम्हारा हृदय मिल के रहे, कभी भी इसमें दरार ना आए। मम वाच मेक मन सुसस्त्वम प्रजापतिस्त्वा निजनोत मह्यम। प्रजापति की ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे करे धर्म कार्य परायण में तुम मेरे साथ दो, तब हम उसको हस्त ग्रंथि कहते हैं। पति के हाथ में कन्या का हाथ दिया जाता है, अर्थात तो पति पकड़ के करके ले जाती है, फिर सप्तपदी आता है, फिर फेरे आते हैं इत्यादि इत्यादि। उसका अर्थ है पति वासुदेव के भक्त होना चाहिए और पत्नी पति का भक्त होना चाहिए, तब दोनों वैकुंठ की यात्रा कर सकते हैं सुगमता से। और पति भगवान की भक्त ना हो वो भी प्रॉब्लम है, और पत्नी पति भक्त ना हो वो भी प्रॉब्लम है। सुबासित सुबासम शरीरम दृष्ट्वा पतिम भ्रातरम पतिम भ्रातर सुतम च पितृ भ्रातर सुतम च। बहुत सुंदर शरीर को देख करके जो पवित्र कन्याएं हैं वो उस शरीर को पिता भाई या पुत्र समझ करके दृष्टि देती है। सहा पतिव्रता, पतिव्रता उसी का नाम है। और कुकुद्म की जो कन्या है वो पतिव्रता की धर्म को सुनने के लिए पाने के लिए ही ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे जो पुत्र हैं भगवान बलराम हैं वो उचित पति हैं तुम्हारे कन्या के लिए, तुम उसी के हाथ में इसको दान में दो। और बलराम जी रेवती रमणो राम कामपाल हलायुध, ये भगवान बलराम जी का नाम है। और बलराम जी आद्य गुरु हैं, बलराम जी की कृपा से ही भगवान की भक्ति सुगम हो जाता है। और वो बलदेव जी रेवती के पति है। हमारे जगन्नाथ जी की एक प्रेयर बलराम जी की जब आता है, बड़ा सुंदर प्रेयर है बलराम जी का, द्रव्याम शोभित लांगलम समुसलम कादंबरी चंचलम रत्नाढ्यावरं कुन्नलम भुजबले आक्रांतं भ्रूमंडलम वज्रभ्रामरे चारुगंडजुगलम नागेन्द्रहारज्वलम संग्रामे चपलम शशांकधवलम श्री कामपालम भजेत श्री बलरामम भजेत। बलराम जी बहुत पराक्रमी है, वो हस्त में लांगल धारण करते हैं और मुसल धारण करते हैं, और पराक्रमी बड़े भाई भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के हैं, इसलिए बलराम बहुत पराक्रमी बल उनके अंदर है, इसलिए बलराम ही एकमात्र योग्य पति रेवती को है। और रेवती के साथ बलराम जी की विवाह हुआ। हरे कृष्ण। समय हो गया राइट। हरे कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीकंतराज श्रीमद भागवतम की जय।